या के चौथे साल यानी सन 4 हिजरी में आपकी पैदाइश हुई। अलबत्ता बहुत सी खसूसियात आपके साथ हैं। मिसाल के तौर पर एक बात यह है जिसको हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, कान अशबह मिन रसूल, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु रसूल अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ज्यादा मुशाबह थे। जैसे किसी शख्स को देख लेते हैं तो उसकी औलाद को देखने के बाद कहते हैं कि भाई ये बाप का परतो है, ये दादा का परतो है, ये बाप लगता है, ये दादा लगते हैं, ये मालूम होता है कि बिल्कुल बिल्कुल हु बहु। तो जिस तरीके से मुशाबे होती है ना औलाद अपने वालिदैन के, इसी तरीके से हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने नाना जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ज्यादा मुशाबह थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सातवें जब ये पैदा हुए तो पैदाइश के सातवें दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका नाम रखा, हुसैन नाम रखा। और अकीका फरमाया, अकीके में दो काम करने के होते हैं, एक ये है कि दाएं कान में अजान बाएं कान में इकामत कह के नाम पुकारा जाए, और दूसरा काम ये रहता है कि सर के बाल निकाल लिए जाएं, और तीसरा काम यह रहता है कि उन बालों के बराबर चांदी को सदका कर दिया जाए। चौथा काम यह होता है कि अगर लड़की है तो एक बकरे के जरिए से, अगर लड़का है तो दो बकरों के जरिए से, अगर इस्तेआत है तो जी दो बकरों को दुबाह करके कुर्बानी करके उसका गोश्त तकसीम कर देना चाहिए या दावत कर लेना चाहिए। हो गई बात, इतनी सी बात है हकीके में। लोगों ने उसमें बहुत सी खुराफात दाखिल कर ली हैं, उसका क्या इलाज है। और अब तो एक रवा रवि अजीब सी है, वक्त तंग है, मैं लायानी उधेड़बुन में जाने को पसंद नहीं करता, इसलिए गैर जरूरी बातों को बिल्कुल या तर्क देना चाहता हूं। इस गुजारिश के साथ के आदमी नाम रखाई करता है, लाखों रुपया बर्बाद करता है, कोई तुक ही नहीं रहता वहां पर पैसे के खर्च करने का। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद रिवायात के एतबार से एक मेंढा कुर्बानी दी और बाद रिवायात के लिहाज से दो मेंढों की कुर्बानी की जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अलबत्ता हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ये फरमाते हैं कि चूंकि ये हसनैन छोटे छोटे थे तो नजर लग जाया करती थी, और खास तौर से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दोनों पर खास दुआ पढ़कर दम करते और पढ़ा करते, अल्लाह से दुआ करते थे। दुआ क्या पढ़ते थे? दुआ ये पढ़ते थे, औज़ु बिकलिमातिल्लाहित्तामात, मैं मुकम्मल कलिमात इलाहिया की तौफील अल्लाह ताला की पनाह हासिल करता हूं, मिन कुल्ल शैतान, हर शैतान से पनाह मांगता हूं, बचाओ मांगता हूं, वहाम्मा, और हर जानदार के शर से हिफाजत मांगता हूं, मिन कुल्ल ऐन लाम्मा, और हर मलामत ज़दा या मलामत करने वाली या लानत मलामत की चीज या शर शोर शर इस तरह की चीजों से और बदनजरी से मैं अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूं, ये दुआ फरमाया करते थे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने नवासों के लिए। आप भी इस दुआ को पढ़ सकते हैं जी, और मसनून दुआओं में वो दुआ मजकूर है जो दुआएं खुले तौर पर सराहत के साथ इस्तीफादे और इफादे के लिए आम है, वो जरूर उन चीजों को हासिल कर लेना चाहिए जी। आदमी क्या होता है, बहुत खास दुआ का तलबगार होता है। आप खास आखा की जुबान से निकली हुई जुबान से जो जुबान दुआ होगी उससे ज्यादा भी कोई खास दुआ होती है, मगर लोगों को एतमाद नहीं होता। बहुत खास दुआ पढ़िए आप। अरे भाई मैं वही दुआ पढ़ूंगा जिसको अल्लाह के रसूल ने बताया। तो बहरहाल ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके से दुआएं पढ़ा करते थे। जिस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ यानी आपने दुनिया से पर्दा फरमाया, उस वक्त हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र 6 साल की थी, चंद महीने ज्यादा हो सकते हैं, 6 साल चंद महीने। इस हाल में आपने अपने आखा से बहुत कुछ सीखा। रिवायतें बहुत सी मजकूर हैं। इमाम तिर्मिजी रहमतुल्लाह अलैह ने आपकी सनदे इस सनद हदीस के एतबार से इसको अहसन असानीद फरमाया और इरशाद फरमाया काना अहसन असानीद मा युरवा अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़्ज़ुहरी अन ज़ैनिल आबिदीन अन अबीही अन जद्दीही। ये 4 वाक्यों से मिलने वाली सनद हदीस बहुत ज्यादा बेहतरीन हदीसों में से है। तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बहुत सी रिवायतें नकल की, उसमें से एक बात यह है कि मेरे नाना जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई, अल बखील मन ज़िक्रतु इंदहु फलम युसल्ली अलैया, सबसे ज्यादा बखील वो है जिसके पास मेरा नाम आए और वो मेरे ऊपर दरूद ना पड़े, वाला वो है बखील नंबर 1। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी आ जाए, आका का नाम आ जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मसनून पैराए में दरूद व सलाम भेजना चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا كما صليت على إبراهيم وغيرہ۔ جس طریقے سے مذکور ہے درود و سلام مسنون طریقے پر، وہی طریقہ زیادہ مقبول، زیادہ مستند، زیادہ باعتبار، زیادہ باوقار، زیادہ باعث اجر و ثواب ہے۔ اپنی سمجھ سے نہیں نکالنا ہے درود و سلام کو، بلکہ درود و سلام کو اس نحو پر پڑھنا ہے جس طریقے پر بتایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے۔ تو ملت عزیزو، جس اور ایک روایت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہے کہ من قتل دون مالہ فہو شہید، جو کماتے ہوئے حلال کمائی کماتے ہوئے اپنا مال حاصل کر رہا ہے اور اگر اس مال کے چوری ہو جانے کا یا فانی ہو جانے کا یا مٹ جانے کا یا کھپ جانے کا یا اس کے لٹ جانے کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں اگر وہ اپنے مال کی حفاظت میں اگر مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا درجہ عطا فرماتے ہیں۔ من قتل دون مالہ فہو شہید او کما قال علیہ السلام۔ تو میرے دوست اس طریقے سے بہت سی باتیں، خاص طور سے ایک بات وہ ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، من حسن اسلام المرء، اسلام کا بہترین حصہ اور اسلام کا بہترین شعبہ اور بہترین اسلام کی بات یہ ہے، ترک ما لا یعنی، جو بات بے فائدہ اور جو کام بے فیض ہو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ بے فائدہ بات نہ کرو، بے فائدہ کام نہ کرو، سمجھ رہے ہو بھائی؟ ہاں، سارے محرم کے رسموں کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ لیکن نہیں، بس شیطان چونکہ گھسا ہوا ہے نا اندر، اسی لیے راہ راست پر نہ رہتے نہ رہنے دیتے، چھوٹے راہ راست پر رہتے نہیں، اور اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو بڑے ان کو رکھتے نہیں۔ ہم تو ڈوبیں گے سنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، सबको लेके बस डूब के दम लेते हैं। हालांकि हदीस मौजूद है, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत मौजूद है, बेहतरीन इस्लाम, इस्लाम की खूबी, इस्लाम का हुस्न, इस्लाम का निखार ये है कि लायानी चीजों को, लायानी चीजों से अपने आप को बचाया जाए। तो ये बात देखिए आप कि ये रिवायत हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की सरपरस्ती भी आपको हासिल रही, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की भी सरपरस्ती आपको हासिल रही। एक मर्तबा की अजीब बात है, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना है, अदल और इंसाफ का पैगर है, अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है जी, और पूरे आलम पे छाए हुए हैं, और आपके नाम से जमाना थर्रा रहा है, लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बेचैनी और कर्व के आलम में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से एक मर्तबा मुखातब होके कह रहे हैं कि ए अली, क्या मेरी जिंदगी ठीक होगी, क्या मैं अच्छा हूं, हक पर हूं या नहीं, और मेरी जिंदगी इंसाफ से लबरेज है या नहीं, और मेरा मामला इंसाफ पसंदाना है या नहीं, और हक पसंदी मेरी तबीयत में है या नहीं, कोई इफराद तो नहीं हो गया, कोई तफरीद तो नहीं हो गई, कोई गलतियां तो नहीं हो गई, कोई झोल तो नहीं रह गया मेरी जिंदगी में। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दाई तरफ हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु थे, और बाई तरफ हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। दो बच्चे खड़े हुए थे, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दाएं बाएं खड़े हुए थे, जैसे आदमी बात करते हुए आजू बाजू खड़े हो जाता है। सामने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अली से वो पूछ रहे हैं, तो हजरत अली कह रहे हैं कि आप मुंसिफ हैं, अदल और इंसाफ से आपकी जिंदगी लबरेज है, आपने ऐसे ऐसे कारनामे नुमाया अंजाम दिए हैं, आप बिल्कुल तरीके हक और सिरात मुस्तकीम पर हैं, आपके अंदर कोई इफरात और तफरीत नहीं है, आप उसी ढंग और रंग के साथ हैं जिस ढंग के साथ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको छोड़ा है, इस तरीके से कह रहे। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हसन और हुसैन की तरफ देख के कहा, भतीजो तुम गवाही दे दो कि हश्र के मैदान में, कि उमर इंसाफ की हालत पर था, जिंदगी गुजारता रहा, जब तक भी हुक्मरानी की, जब तक भी खिलाफत पर फायद रहे, बिल्कुल अदल और इंसाफ से लबरेज जिंदगी रही। तो हजरत हसन भी चुप, हजरत हुसैन भी चुप, दोनों खामोश अपने अब्बा की तरफ देखने लगे, हजरत अली मुर्तजा की तरफ। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने कहा कि बेटो अशहदु व अना मअकुम शहीद, तुम दोनों भी गवाही देना, मैं भी गवाहों में से हूं, अशहदु व अना मअकुम शहीद, तुम दोनों गवाही दे देना इस बात की मैं भी इन गवाहों में से हूं। वो हजरत हुसैन हजरत हसन रजी अल्लाह, मगर बड़ी अजीब तारीख है दुनिया की कि इतने इंसान पसंद इंसानों के साथ भी जुल्म ढाया जाता रहा, सितम किया जाता रहा, मजलूमाना शहादतें होती रहीं, कत्लो खिताल के बाजार गर्म रहे, हालात इंतहाई नागुफ्ता में हो गए, बहुत सीधी सादी जिंदगी गुजारने और बसर करने के बावजूद हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे भी दुश्मन लग गए, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा तिब्रिस्तान के जिहाद में भी शरीक रहे, और खास तौर पर जिस वक्त गालिबन 35 हिजरी है आगे पीछे, जिस वक्त हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर पर बलवाई हमलावर हुए, उस वक्त हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने अब्बा से इजाजत लेकर, या अब्बा ने हुक्म देकर कहा कि बेटे उस्मान के घर जाओ, अमीरुल मोमिनीन के घर पहुंचो, उनके दरवाजे के पास मुहाफिज और निगरान बन जाओ और हिफाजत करो, कहीं दुश्मन अंदर ना आ जाए। बोले ठीक है अब्बा मैं हाजिर हूं। हजरत उस्मान के दरवाजे की निगहदाश्त करने वाला मुहाफिज, और सूरत हाल ये लेकिन बलवाई हमलावर हो गए और ये उन लोगों ने ये समझ लिया कि अगर दरवाजे के रास्ते से दाखिल हुए तो हमारी खैर नहीं, पीछे के दीवारों से फलांग करके अंदर दाखिल हो जाओ और उस्मान के ऊपर हमला करो। नऊज़ु बिल्लाह, पीछे के दरवाजे से दाखिल हुए और हमलावर हुए। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के मौके पर उनकी हिफाजत के लिए हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु दरवाजे उस्मान पर खजी खादिमानों हैसियत से खड़े हुए थे। मेरे अब्बा ने हुक्म दे दिया है, मैं अपनी जान जोखिम में डालकर किसी दुश्मन को करीब आने नहीं दूंगा। ऐसे मुहाफिज दीन, ऐसे निगरान दीन मदीन और ऐसे महबूब आलम और ऐसे अजी इंतहाई चुनिंदा और बरगुजीदा शख्सियतों के साथ ही जब दुनिया ने जुल्म सितम का मामला किया है तो मेरे दोस्त आप क्या, आप शिकवा अल्लाह के सिवाय आप किससे और कर सकते हैं। हजरत हुसैन रजी हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला के जमाने में भी उरूज पर रहा, मुख्तलिफ जंगों में आप शरीक रहे, जिहादों में शरीक रहे हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला। हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला के जमाने में भी कुस्तुनतुनिया की एक अजीम जिहाद और जंग के अंदर ये हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला शरीक रहे। वो ऐसी अजीब जंग थी क्या जिसमें शरीक होने वाले सहाबी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी सुनाई है, जिसमें हजरत हुसैन भी हैं। मगर मेरे दोस्त ऐसी सूरत हाल रही है जी, यहां उनके उनके फजल का, उनके करम का, उनकी मेहरबानियों का, उनके जूद सखा का और उनके एजाज इकराम का, उनके एहतराम का हजरत शेखैन फिस सहाबा हजरत अबू बकर और उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बहुत इकराम करते थे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 5,000 का वजीफा जारी करा दिया बैतुल माल से हजरत हसनैन के लिए, बहुत इकराम होता था इन हजरात का। हर हर लिहाज से अल्लाह पाक ने सहूलतें पैदा फरमा दी थी। लेकिन मेरे दोस्त एक सूरत हाल ये पेश आई कि हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जिन वजूहात की बुनियाद पर अपने बेटे यजीद को खलीफा बनाना चाहा, उन वजूहात की बुनियाद पर चंद सहाबे, कई एक सहाबे किराम को इख्तलाफ था, उसमें खास तौर पर हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु को, हजरत इब्ने जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु को, हजरत अब्दुल रहमान रजी अल्लाह तआला अन्हु को और जी हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को और हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को, ये हजरात और भी कई सहाबे किराम हैं जो इस बात से इख्तलाफ रखते थे कि जो वजूह तरजीह खिलाफत के मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु जिक्र कर रहे हैं हमारे नजदीक वो काबिल कबूल नहीं है। यहां से हालात दिगर वो हुए और खुसूसी पलटा खा गए। हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे को नामजद करना चाहा, मुंतखब समझा और बल्कि यूं समझिए कि आम बैत ले ली गई 56 में यजीद के लिए, खिलाफत यजीद पर आम बैत ले ली गई 56 में, लेकिन चंद साहब किराम उल बैत के लिए आमादा न हुए। हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला के इंतकाल के बाद जब यजीद ने जब खिलाफत उम्मी के एतबार से पूरे लोगों को बैत के लिए जी उठाया और बुलाया तो उसमें चंद सहाबे किराम जी जरा तवक्कुफ उन्होंने किया, उसमें से खास तौर पर हजरत इब्ने जुबैर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर और हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं। चुनांचे यजीद ने क्या किया, मदीने में, मदीने के अंदर वलीद बिन उकबा नामी एक शख्स जो गवर्नर थे उनके पास ये बात कहला भेजा कि ये तीन हजरात को पहले बैत के लिए बिला ताखीर आमदा कर लो, तैयार कर लो, उनसे कहो कि बस बैत हो जाए, एक इब्ने जुबैर, दूसरे इब्ने उमर, तीसरे हुसैन। उस वक्त हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर मदीने में मौजूद नहीं थे। हजरत जिस वक्त हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु से बैत की बात कही गई तो आपने कहा कि मेरे ऊपर सख्ती न करना, मुझे मोहलत दो और नरमी से काम लो, मुझे मोहलत दीजिए और नरमी से काम कीजिए। उन्होंने कहा कि ठीक है। ये बात वहां पर पहुंचा दी गई, यजीद के पास पहुंचा दी गई। उसके बाद हुआ ऐसा कि आप मदीने मुनव्वरा छोड़कर मक्का आए, मक्के में आपने जहां पर खियाम फरमाया वहां पर इराक और कूफे के खतूत आना शुरू हो गए। जब खिलाफत का बोलबाला हुआ और बैत होना, आम खास बैत होना शुरू हो गई, तो कूफे के बहुत से खतूत हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला के नाम आ गए मदीने मक्के मुकर्रमा में। किसी पे यूं लिखा हुआ था, हम सिर्फ आपके मुंतजर हैं, दूसरी बात करना नहीं चाहते। किसी में यूं लिखा हुआ था कि हम यहां पर जिनको जी यहां पर मुंतकब किया गया है, जिनके पीछे हम नमाज पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ आपके पीछे नमाज पढ़ना चाहते हैं, हम इनको इमाम बनाने को तैयार नहीं। इस तरह की बात है। और ऐसे इतने खुदूत आए, बाज सीरत निगार और वाकया निगार ये लिखते हैं कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला के पास अगर कोई बहुत बड़ा संदूक होता तो पूरा संदूक खुदूत से भर गया है। और बाज हजरत ने इस बात की सराहत की है कि 80,000 से लेकर 1,00,000 खुदूत हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला के पास आए कि हम आपके मुंतजिर हैं, हम इनके उनके हाथ पर बैत होना नहीं चाहते, हम आपको खलीफा में तस्लीम कर रहे हैं और आपके हाथों पर हम बैत होना चाहते हैं, शिद्दत से आपका इंतजार है। तो आपने जब इतना बहुत ज्यादा हालात इस तरीके के देखे तो आपने हजरत मुस्लिम बिन नकील रजी अल्लाह तआला अन्हु से ये बात कही कि ऐसे ऐसे हालात हैं कूफे के और इराक के, खत ऐसा आ रहा है, इत्तलात ऐसी आ रही है, इंतजार ऐसा चल रहा है, अभी फौरन फैसला करना भी कुछ मौजू नहीं है, बेहतर ये है कि आप चले जाएं। हजरत मुस्लिम बिन नकील रिश्तेदार भी थे, गालिबन चाचा रिश्ता था, तो हजरत मुस्लिम बिन नकील वहां पर पहुंचे, कूफा पहुंचे। वहां जाते हैं तो जी बस सारे के सारे लोग ऐसा मालूम हो रहा है कि जैसे हजरत हुसैन ही का इंतजार चल रहा है। उन्होंने कहा कि हजरत हुसैन तो तशरीफ लाएंगे मगर उससे पहले आप अपने हाथ पर बैत कर लो, कि 12,000 लोग हजरत मुस्लिम के हाथ पर बैत हो गए। आपने ये हालात लिखे वहां पर कि लोग टूट पड़ रहे हैं और बैत हो गए हैं, 12,000 लोग तैयार हैं और आपका इंतजार चल रहा है, हालात तो साजगार हैं और मुस्बत फिजा चल रही है, कोई मनफी रुख नहीं है इस फिजा का। हाँ, जाहिरी हालात के लिहाज से मेरा ख्याल ये है कि आप तशरीफ ला सकते हैं अगर आप मुनासिब समझें। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु इस हालात की बुनियाद पर वहां से निकल गए। अभी कूफा पहुंचे नहीं है, अभी दरमियान में एक मौका, इस दरमियान में जब इन हालात का इल्म हुआ तो यजीद ने कूफे के गवर्नर जो हजरत नुमान बिन बशीर रजी अल्लाह तआला अन्हु थे उनको हटा दिया, हटाकर उबैदुल्लाह इब्ने जियाद नामी शख्स को गवर्नर मुंतखब कर दिया, दूसरा आमिल मुकर्रर कर दिया, नुमान बिन बशीर को हटा लिया गया। वो इंतहाई तबीयत का सख्त इब्ने जियाद, उसी की ज्यादतियों ने ये सारे खेल खेले जी, इन बदनसीब इंसान, बहुत ज्यादा शिकावत और बदबख्ती की बात, उसने सख्तियां शुरू कर दी। जब रास्ते में पहुंच, अच्छा उधर इतनी सख्तियां शुरू कर दी कि जो लोग मुस्लिम बिन नकील रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर बैत हुए थे वो आहिस्ता आहिस्ता हटना शुरू हो गए। अच्छा उसमें क्या हुआ, जब ये बात कही गई कि भाई तुम लोगों ने मेरे हाथ पर बैत, तुम लोग मेरे ज़ियाद वगैरह की तरफ से कि सख्तियां की जाती रही, किसी को डराकर, किसी को धमकाकर, किसी को लालच दिलाकर, किसी को ओहदों का लालच देकर, किसी को माल का लालच देकर, किसी को वरगलाकर, किसी को भटकाकर, मुख्तलिफ अंदाज से लोगों में यहां से लेकर वहां तक जी तफरका पैदा कर दिया और फिजा पूरी मुकद्दर हो गई। इस मुकद्दर फिजा का इल्म हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को नहीं हुआ। अभी आप कूफा नहीं पहुंचे थे, खादिसिया नाम के एक 3 मील मुकाम पर था, वहां पर एक मुकाम पर ठहरे रहे, वहां पर हुर बिन यजीद नामी एक शख्स से मुलाकात हुई। आपने उनसे पूछा, उसने पूछा कि हजरत आप किधर, आपने कहा कि कूफा जा रहा हूं। उसने कहा कि आपके लिए तो आला साजगार नहीं है, वहां आपका जाना बेहतर नहीं है। क्यों ऐसे ऐसे हालात की इत्तला मिली है? लेकिन हालात अब बिल्कुल बदल चुके हैं, हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। आपने कहा कि मुझे इस बात का इल्म नहीं था। फिर क्या हुआ? आप वहां पर आगे नहीं जा सक रहे थे, आपने पीछे जाना चाहा। एक और शख्स मिला उमर बिन साद नाम का, वो भी बड़ा अहदेदार और मनसबदार किस्म का आदमी था। उमर बिन साद मिले, जब वो मिले तो उसने पूछा कि आप किधर? आपने कहा कि कूफा जा रहा हूं। उसने कहा कि ऐसा नहीं, इब्ने रियाद का हुक्म यह आया है कि आप मेरे हाथ पर बैत कर लें। आपने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इब्ने रियाद का हुक्म क्या है? इब्ने रियाद का हुक्म यह है कि इन वजा यदहु फी यदिही फबिहा, अगर उन्होंने अपना हाथ मेरे हाथ में रखा यानी बैत हो गए तो इसी सूरत में खैर है, वइल्ला फकातिलहु, नहीं तो खिताल कर लो, दूसरी बात न करें। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु उमर बिन साद से उन्होंने खुले तौर पर तीन बातें की, ये खास बात है सुनने की। उन्होंने तीन बातें कही कि या तीन बातों में से, इन तीन शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी कर लो, तुम लोग कबूल कर लो, तीन बातों में से कोई एक बात पूरी कर लो। एक ये है कि मैं जिधर से आया था मक्का और मदीना वहां चले जाता हूं, मैं अब कूफे का इरादा नहीं करता, जहां से आया वहां चला। दूसरी बात यह है कि मुझे रात यजीद के पास पहुंचने दीजिए ताकि मैं दूबदू बातचीत करके मसले को आखिरी हद तक निमट सकूं, फिर कोई झोल ना रहे। और तीसरी बात यह है कि न ये करना चाहते न वो करना चाहते, तो मुझे किसी सरहद के ऊपर भेज दिया जाए जहां मुसलमानों और कुफार का मुकाबला हो, तो मैं वहां लड़ता रहूं और इस्लाम की हिफाजत के लिए लड़ूं, या तो फातह बन जाऊं या शहीद बन जाऊं, मुझे वो मंजूर है लड़ाई, मुझे ये लड़ाई मंजूर नहीं है। उमर बिन साद ने कहा कि इब्ने रियाद से कह के देखता हूं क्या बोलते हैं वो गवर्नर और आमिल साहब, बड़े साहब जी। इब्ने रियाद के पास बात पहुंची तो इब्ने रियाद ने कहा कि तीनों शर्तों में से एक भी शर्त मंजूर नहीं है, एक ही बात है बैत की, दूसरी बात नहीं, और इन तीन शर्तों में से कोई शर्त मंजूर नहीं। नतीजतन वहीं पर करबला का मैदान कायम हुआ और आप एक तरफ मुड़ गए, वो करबला का मैदान था, और वहां पर आपके साथ कौन थे? 70-72-80 के आसपास, ज्यादा से ज्यादा 100 अफरासात थे, और आपके मुकाबले पर उमर बिन साद की निगरानी में मातहती में आई हुई फौज का एक हिस्सा 4000 का लश्कर था आपके मुकाबले पर। उसमें से बेशतर वो लोग थे जो कूफे में आपकी हिमायत और तरफदारी के राग लापते थे, वही दरअसल शिया हैं, जो शुरू में हिमायत करके बाद में बगावत पर उतर आए, वही हैं शिया और रावजी। जी वो जी मुहिब्बे हुसैन नहीं है, वो दुश्मन हुसैन है। वो मुहिब्बे आले अतहार नहीं है, वो दुश्मनाने आले अतहार हैं। जे निस्बत खां करा बालम पाक, कहां ये मोहब्बत कहां वो मोहब्बत। एक तरफ जाहिर में मोहब्बत का लिबादा ओढ़कर और बातिन के अंदर मेरे दोस्त इस तरीके से कर्बला के मैदान में मारे का एक कारदार गर्म हो गया। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास आपके साहिबजादे अली मौजूद हैं, जिनका लकब जैनुल आबिदीन है। आपके बेटे का नाम भी अली था, उनको जैनुल आबिदीन बोलते आम लफ्जों में लकब के तौर पर। इस एक और एक बेटा था, उनको आके एक तीर लगा। उस मौके पर हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने दुआ की, ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा हुक्म बैनना व बैन कौमिन दाऊना यंसरूना फखतलूना, एल्ला आप फैसला करना हमारे और उन लोगों के दरमियान में जिन्होंने हमको बुलाया, और मंशा ये था कि वो हमसे मदद लेंगे या मदद करेंगे, लेकिन वही हमारे कातिल हैं। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को जी शहीद कर दिया गया। बाद मौरखीन ने लिखा है कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का कातिल शुमर है, और बाद हजरत ने दूसरा नाम लिखा है, उनका नाम, उसका नाम सिनान बिन अनस है। सिनान बिन अनस, उसने आपको खत्म कर दिया और शहीद कर दिया। एक और शख्स है, वो खौली बिन यजीद नाम का एक शख्स है, उसने आपके सर को आपके धड़ से अलग कर दिया। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र के बारे में तीन खबरें हैं। एक ये है कि करबला के पास में मशहद अली के पास आपकी कब्र शरीफ है। दूसरी बात यह है तारीख में कि आपकी कब्र का कहीं पता नहीं है। तीसरी बात जो अल्लामा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ जज्म के साथ नकल किया है वो ये है कि आपका सर जी करबला से कूफा भिजवाया गया। ज्यादा काबिल तरजीह बात जो तरजीह बुनियादों पर रुआत के जरिए से मालूम हो सकती है वो ये है कि आपका सर मुबारक जी वो तश्त में रखकर वहां से करबला के मैदान से कूफा ले जाया गया इब्ने जियाद के पास। जी इब्ने जियाद ने छड़ी लेकर आपके सरे मुबारक को कुरेदा। कुरेदने का लफ्ज हदीसों में मौजूद है मगर कुरेदने की जो दो तौजीहें की हैं मुहद्दिसीन ने, एक तौजीह ये की है जैसे कोई आदमी फिक्र में जमीन कुरेदता है छड़ी लेकर, वो जमीन का कुरेदना मुराद है। और बाद मुहद्दिसीन ने यूं नकल किया कि नई नई बात ऐसी नहीं, तहखीर और तजलील के तौर पर इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला के सर को कुरेदा गया और छड़ी के जरिए से हिलाया गया। वहां कूफे के जरिए से कूफे से फिर मदीने मुनव्वरा भेज दिया गया आपके सरे मुबारक को, और मदीने मुनव्वरा में हजरत हसन रजी अल्लाह तआला के करीब में उनको दफन किया गया है। ये तफसील है हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला की शहादत की, कुछ वो जरूरी तफसील जो चंद मिनटों में बहुत बड़े मजमून की शक्ल में आप हजरात की खिदमत में भेजी गई है। अलबत्ता अहले सुन्नत वल जमात के एतबार से तहकीक की रविश और नुक्ते नजर के एतबार से ये बात अच्छी तरह याद रखिए कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो सैयदुश्शुहदा नहीं है। सैयदुश्शुहदा हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हो है। हजरत बदर और ओहद में जो शहीद हुए हैं उनका मुकाम मर्तबे शहादत के लिहाज से बुलंद है और सैयदुश्शुहदा का लकब आका ने हजरत हमजा को दिया है। वो हजरत हमजा के साथ है और मुसर्रह मौजूद है। उसके बाद में शहादत का रुतबा उन लोगों का है जो फतेह मक्का से पहले अल्लाह जी अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी के लिए जिन्होंने अपनी जान और माल लुटाकर अपनी जान खपाई और मर्तबा शहादत पर फायज हुए। शहादत की बहुत सी किस्में हैं। एक शहादत छोटी शहादत कहलाती है, एक शहादत बड़ी शहादत कहलाती है। जैसे सिद्दीकियत के बहुत से मर्तबे हैं, जैसे शहादत के बहुत से मर्तबे हैं, जैसे सालेहियत के बहुत से मर्तबे हैं, इसी तरीके से शहादत के भी बहुत से मर्तबे हैं। बाद वो छोटी छोटी शहादतें आप हजरात को मालूम है। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अली की तौजीह के एतबार से एक रिवायत अर्ज करके दुआ कर लेना चाहूंगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सबअतु शुहदा मक्तूल फी सबीलिल्लाह। अल्लाह के रास्ते में शहादत पाने वाले लोगों के अलावा मजीद और शुहदा के सात किस्में हैं, और भी कई हो सकती हैं लेकिन इस एक रिवायत में सात का तज़किरा है। उसमें से एक ये है अल मबतून शहीदन, जो शख्स पेट की बीमारी में खत्म हो जाए और मौत का शिकार हो जाए वो भी शहीद है। अल मबतून शहीदन, कैसा ही पेट का आरजा हो, छोटा हो बड़ा हो किसी तरह का हो, बहरहाल अगर वो पेट का आरजा है और उसमें वो मर गया है अल्लाह पाक उसको शहादत के दायरे में दाखिल कर देंगे। नवाजिश है उनकी, कोई एक बहाना चाहिए ले ले। लोग पूछते हैं साहब ये क्यों वो क्यों वो क्यों वो क्यों, इसके पीछे अल्लाह का जो निजाम है उस हिकमत बालिगा को हम नहीं समझ सकते, उस हिकमत बालिगा को हम लोग नहीं समझ सकते। अल्लाह अगर कोई किरण अपने इल्म और हिकमत की अता फरमा दे तो फबिहा खुशनसीबी की बात ही, अल्लाह का करम खुसूसी समझ लीजिए। तो एक शहीद वो और दूसरे अल गरीक शहीदन, अगर कोई शख्स पानी में डूब कर मर गया तो वो भी शहीद है। एक है इरादे से डूबना, एक है गैर इरादी तौर पर डूबना। इरादे से डूबे तो मुजरिम है, कसूरवार है जी, और मुआज़ब हैं, काबिले ताज़ीब हैं, काबिले अज़ाब हैं, मुस्तहिक़ अज़ाब हैं। और ये गैर इरादी तौर पर पानी में डूब गए आदमी खत्म हो गए, अल्लाह शुहदा की फहरिस्त में उठा लेंगे। क्या भाई कितना अजीब नजाकत वाला मामला है अल्लाह साहिब उजातिल जंब शहीद। आदमी की फसलियों में खास किस्म का दर्द होता है और वो खास किस्म की बीमारी होती है जिसमें आदमी सूखने लगता है और उसकी फसलियां उछलने भी लगती हैं और दर्द भी हो जाती है, मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होता है, मगर उसका मर्ज का ज्यादातर ताल्लुक इंसानी फसलियों से होता है। हुक्मा इस उनवान को ज्यादा जानते हैं, उसको जातुल जंब की बीमारी कहते हैं। अगर कोई शख्स उस बीमारी में मरा तो भी शहीद है। एक और शहीद है जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अल मतऊन शहीदुन। जी एक एक आदमी है, आप तीर लेके आपको मार दिया गया, कोई असलहा लेके आपको मार दिया गया तो भी शहीद। और एक मफहूम यह भी है कि आप उसके ऊपर लान तान कर रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं और आप बिल्कुल मासूम हैं, बेगुनाह हैं, आपके ऊपर किसी किस्म की खता नहीं है, लेकिन आपके ऊपर इल्जाम धरा जा रहा है, ताने कसे जा रहे हैं, आप ये ऐब हैं लेकिन ऐबदार बता रहे हैं, आप बिल्कुल बेकसूर हैं लेकिन कसूरवार लोग बता रहे हैं, और आप असल में बरी हैं लेकिन मुख्तलिफ किस्म के ताने आपके साथ लग रहे हैं, और उस एहसासात की शिद्दत और इन अवारिस की कसरत की वजह से उस बोझ तले अगर आदमी मर गया तो अल्लाह पाक उसको भी शहीदों में उठा देंगे। कैसा अजीब मामला है अल्लाह का, वो भी शहीद। अलहरीक शहीद, अगर कोई आग में जल गया तो भी शहीद है। एक ही इरादे से जला तो फिर मुस्तहिक अज़ाब है, गैर इरादी तौर पर जल गया, खत्म हो गया, मशीयत इलाही और हिकमत हक के तहत एक मुसलमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है और जल गया है, कबाब बन गया, अल्लाह पाक उसको शहीदों की लिस्ट में उठाएंगे, क्या शान है उनकी। जी बस इधर उंगली कटी और उधर शहीदों में नाम, इधर एक खून का खतरा वहां और उधर शहीदों में नाम। अल्लाह की शान बेनियाजी के कुर्बान जाइए। अल्लाह अपनी चीजों में जैसा चाहे तसर्रुफ कर सकते हैं। एक और खास बात भी उसी हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स किसी दीवार वगैरह के गिरने की वजह से, अल मय्यत मिन अल हदम फहुवा शहीद। जी मुनहदिम हो जाने से, किसी इमारत के, किसी दीवार के, किसी पत्थर के, किसी ईंट पत्थर के गिर जाने से, या किसी औजार और असलहा के गिर जाने से, किसी चीज के खासतौर पर इमारत वगैरह इस तरह की चीजें गिर जाती है, आदमी मुनहदिम हो जाती है, चीज तो उसके नीचे दब के खत्म हो जाता है। अगर वही ईमानदार शख्स है तो अल्लाह पाक उसको भी शहीदों में उठ। ईमान की हर जगह शर्त है, समझ रहे नहीं? चाहे वो तिब्बत में मरो, चाहे चीन में मरो, चाहे इंग्लैंड में मरो या जापान में, मगर ईमान की शर्त है। ईमान तौहीद की शर्त के साथ ये फजीलत है। ईमान तौहीद नहीं तो अजाब है। ईमान तौहीद अगर साथ नहीं है तो फिर वो सिर्फ अजाब है, उसके सिवा कुछ और नहीं है, वो दर्जा और या कुछ भी नहीं है, वो मुस्तहिक के अजाब शख्स है। और एक आखिरी बात जो आका ने इरशाद फरमाई वो है, अलमरअतुल्लती मातत अनिल विलादा, वो औरत जो दर्द जह की तकलीफ में मर गई और बच्चे की विलादत और पैदाइश की वजह से तकलीफें झेलते झेलते खत्म हो गई, तो अल्लाह पाक कहते इसको भी शहीदों में उठाओ। अल्लाह ने शहादत का अजीम मर्तबा रखा है। हदीसों की रूह से शहादत का उज्मा, शहादत उज्मा के बाद फजीलत के आखिरी दर्जे की बात यह है। यूं फरमाया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि शहीद का खतरा खून जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह पाक मगफिरत फरमा देते हैं। मेरे दोस्त, ये नवाजिशात हैं हजरत हक की तरफ से। बात चीजें हमको समझ में नहीं आ रही, लेकिन आहिस्ता 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 समझते समझते आदमी समझता है। अल्लाह पाक अपना खुसूसी करम से हमारी इन मजलिसों को कबूल फरमाए और इफरात और तफरीत से पाक करके अल्लाह ताला बेजा रसूम और रिवाज से हमें पाक फरमा दे और दुनिया और आखिरत की सआदत और आफियत हमारा मुकद्दर फरमाए। व सल्लल्लाहु अला नूरिन गुलशन नूरहा पैदा व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।